Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of economics, business, and the stock markets. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena.
Namaskar. Market Mantra ke aaj ke ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui aarthik, karobari और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
आप दोनों को नमस्कार।
आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगभाष्यम।
Thank you, Amrish. The top stories. Domestic benchmark indices log losses. Sensex falls over 420 points, while Nifty settles below 24,350. India's core sectors grow by 2% in September this year. And Union Minister Piyush Goyal participates in panel discussion at the Future Investment Summit in Riyadh.
घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 420 अंक से अधिक की गिरावट दिखाई दी और निफ्टी में 24,350 अंकों के नीचे बंद हुआ। क्षेत्रों में इस वर्ष सितंबर में उत्पादन दर में 2% की वृद्धि हुई और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में पैनल चर्चा में भाग लेंगे। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजार 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ आज बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 427 अंक यानी 0.53% की गिरावट के साथ 79,942 अंकों पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 126 अंक यानी 0.51% गिरकर 24,341 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में सकारात्मक माहौल दिखाई दिया। मिडकैप सूचकांक में 0.04% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की बढ़त दिखाई दी। सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई।
Well, as Ambrish just mentioned, the domestic benchmark indices today ended with losses of over 0.5%. The BSE Sensex declined 427 points or 0.53% to close at 79,942, while the NSE Nifty shed 126 points or 0.1% to close at 24,341. The broader market at the Bombay Stock Exchange ended, however, in positive terrain. The mid-cap index was marginally up 0.04%, while the small-cap index rose more than 1.5%. In the Sensex pack, 19 out of 30 companies ended in the negative terrain. In the laggards, Infosys shed 2%, ICICI Bank lost more than 1.5%, and Kotak Mahindra Bank fell 1.3%. Conversely, in the top gainers, Maruti climbed nearly 2%, IndusInd Bank gained 1.8%, and Adani Ports added over 1.6%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 out of 20 sectors logged losses. In the top laggards, consumer durables declined 1.2%, Bankex slipped almost 1%, and financial services fell by more than 0.8%. In the top gainers, services added over 1.8%, industrials increased by 1%, and FMCG gained nearly 1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,892 companies advanced, while those of 1,040 declined. 79 stocks, however, remained unchanged. At the National Stock Exchange, 56 companies hit their 23-week high, while 22 hit their 52-week low.
और विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84.08 रुपए दर्ज की गई। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 104.21 पर दर्ज किया गया। तो सिद्धार्थ जी, जैसा कि हम शेयर बाजार का हाल देख रहे हैं कि एक बार फिर से काफी बड़ी गिरावट आज दर्ज की गई, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को संभलने नहीं दे रहे?
नहीं अमरीश, देखिए आप इसको आप बड़ी गिरावट ना कहें, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हमने देखा है कि मतलब हजार हजार पॉइंट के तकरीबन जो है मार्केट गिरी है। तो मैं बोलूँगा आज फिर भी 400 पॉइंट के आसपास ही मार्केट गिरी है। हालांकि ये जो गिरावट का दौर है ये हम देखेंगे तो अक्टूबर जो पूरे महीने में जो शुरुआत हुई है और वो कंटिन्यू कर रही, तो एक तो जो बड़ा कारण है FIIs की सेलिंग और दूसरा US के इलेक्शंस को लेके जो एक अनसर्टेनिटी है, फिर जो मिडिल ईस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको लेके जो इश्यूज हैं, प्लस कुछ वैल्यूएशंस जो फाइनेंशियली डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो वैल्यूएशंस थोड़ी हाई हैं, प्लस जो डोमेस्टिक फैक्टर, एक जो हमारा अपना एक कारण जो हम लोग देख रहे हैं वो है जो सेकेंड क्वार्टर में जो कंपनीज की अर्निंग्स हैं, जो जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं उसमें कुछ कुछ सेक्टर्स में मतलब कहीं कहीं जो है देखने को मिल रहा है कि अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं है, उतना अच्छी नहीं दिख रही, आउटलुक उतना अच्छा नहीं है, अर्निंग्स भी अच्छे नहीं है, तो वो भी एक कारण है विच इज़ पुलिंग डाउन द मार्केट्स।
या एंड सिद्धार्थ, मोर देन टुडेज एक्शन, यू नो इफ यू हैव टू सी द लास्ट यू नो वन एंड हाफ मंथ्स, द सेंसेक्स यू नो हैविंग सीन लेवल्स ऑफ 85,000 प्लस हैज कम डाउन बाय मोर देन 5,000-6,000 पॉइंट्स। Why is that? And even the festive season, we are into the prime of the festive season. Tomorrow is Deepavali. And despite that, the festive season has not been able to enthuse the markets.
See, as I said to the question of Amrish, basic what is happening is, but FIIs are selling on the one hand. It's basically because they're moving, shifting to China for better valuations. They think they are getting at cheaper levels. Plus the stimulus provided by the Chinese government to boost its own economy. So I think that is the good reason. But as you said, despite Diwali, but I think Diwali festival, I think we have seen a huge, as if you read newspaper reports, there have been the sales people have come out and they have bought in huge numbers in terms of gold, other items also. But the good one thing which needs to be seen, one big positive, that when FII selling earlier used to kind of completely rattle Indian markets. Okay. But the positive which we are one positive which we should we take from this is that the domestic institutional investors, despite FII selling, FIIs have almost sold in October. I think this month they would have sold around 90,000 crores worth of stocks.
Yeah.
But on the other hand, the domestic institutional investors, which is insurance companies, mutual funds, pension funds, they have bought heavily. So they have almost bought to the tune of over 1 lakh crores. Plus, if you see the participation of FIIs and vis-a-vis the DIIs in the Indian market, so there is now the difference is only about a percentage point. So, fine, there is a selling happening from FIIs, and the reason, as I said, is basically till we see there is a some kind of uncertainty because of what happens in US elections, who
That's
wins.
True.
So,
yeah.
That is kind of building up. Plus, FIIs on its own, they have shifted. And also, I think, as I said earlier, also the earning season has not been so good as not as
so it's that the that impact is
pulling
is
up.
There.
Yeah, impact is there. Plus, still, I would say the Indian story is intact.
Okay,
India, as far as our own growth story, we heard RBI governor talking in very detail in US also. He says the positives kind of outweigh the negatives in the Indian economy.
Yeah.
So, plus, if you look at the growth outlook, you look at inflation outlook. So, and another thing which I see is in the now in the second quarter. And plus the remaining two quarters, we would see a huge pushed from the in terms of public expenditure, the government expenditure, capital expenditure.
That's
because in the first quarter it was impacted because of elections, and with other factors also. If you look at the fiscal deficit, all that everything is under control. So I don't see major concerns for Indian economy and they impacting our stock markets.
Right. Yeah. Siddharth, let's look at the nitty-gritties of today's market action also. You know, on a day when the Sensex and the Nifty goes down by, you know, more than 0.5%, we have the mid-cap, which is marginally up, and the small-cap, you know, rising more than 1.5%. How do you like to see that? Is there better valuation available elsewhere in the market, especially the small-cap?
No, Rangabhasham, I would say what is happening is they have taken the beating the most has also happened in those mid caps and the small caps.
They are kind of recouping now.
Yeah, so I think people must be doing value buying since they have corrected to a great extent. But I don't know if we still there is more in store. So I think that would be one reason why people shifting to or there is a buying in mid cap or small cap. But as we always talk for our own investors, for retail investors, I think if you're coming to stock market, one thing should be clear. This is not a place we should look at overnight gains. You should look at investing for a longer period if you're looking at, you know, good returns. Yes. And plus invest in good companies, look at the company profile, look at the people, company management. So if you do your homework well, I think there shouldn't be any issue.
Yeah, lekin Siddharth, jis tarah se bazaar lagatar hi gir raha hai, jaisa aapne abhi explain bhi kiya, to aise halat mein jab Sensex 80,000 ke niche hai, to aapko lagta hai ki retail investors ke liye bahut hi acha mauka hai bazaar mein enter karne ka?
देखिए अमरीश, एक बात बड़ी क्लियर है, रिटेल इन्वेस्टर अभी हिंदुस्तान में ज़्यादा, जो एक आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड आया है कि हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत बड़ा तादाद रिटेल इन्वेस्टर जो है आ रहा है। तकरीबन अगर सितंबर की अकेले हम लोग बात करें तो मुझे लगता है SIP से तकरीबन 25,000 करोड़ का निवेश आया है मार्केट्स में। तो एक तो वो एक आपको तरीका है आप मार्केट्स में लगाएं, क्योंकि SIP के थ्रू आप आते हैं तो कोई जो उसको प्रोफेशनली मैनेज करते हैं एसेट जो फंड मैनेजर हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनको पता है कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है। और SIP के रिटर्न्स अभी तक जो अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली अच्छे रिटर्न्स ही लोगों को मिले हैं। दूसरा है, अगर आप डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तो एक बात बिल्कुल सोच समझ के लगाएं, किसी से अगर किसी प्रोफेशनल की मदद ले लें अगर ले सकें, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाएं। ये ना सोचें कि आप रातों रात आज आपने पैसा लगाया कल आपको मुनाफा हो जाए, और वो भी इस समय जब बाजार नीचे जा रही हो। हाँ, ये जरूर है कि ये एक ऐसा समय भी है जब आपको कुछ स्टॉक्स अच्छी वैल्यू पे मिल सकें, जो हो सकता है पिछले एक महीने पहले तक और महंगे रहे हों, थोड़े अभी सस्ते भी हुए हैं, तो कुछ उसमें अच्छे स्टॉक्स ने भी बीटिंग ली है कुछ सेक्टर, और हर सेक्टर में आपको मुझे लगता है पैसा बन सकता है। लेकिन आप कंपनी चुने, उसका मैनेजमेंट चुने, और लंबे अवधि के लिए पैसा लगाएं। अगर आप छोटी अवधि के लिए लगा रहे हैं तो ये मान के चलें कि आपको नुकसान होगा
जी। और लेकिन जो आपने जैसे म्यूचुअल फंड कहा, तो अभी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो नीचे, काफ़ी नीचे की NAV पे मिल रहे हैं, तो वो म्यूचुअल फंड में भी एक अच्छा मौका तो सामने आई है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए।
बिल्कुल अमरीश, और अच्छा है। और एक बहुत पॉजिटिव एक और बात, जो स्टोरी इस पूरे एक महीने के जो उथल पुथल हुई है मार्केट में, हमने ये देखा है कि एक तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप बिल्कुल मजबूती से बने हुए हैं, जहां FII बेच रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं, तो इस और दूसरा जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको बहुत अच्छे से एजुकेट किया है, जो हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं या जो इन एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं इस तरह से, उन लोगों ने जो इस बार रिटेल इन्वेस्टर को इतने अच्छे से एजुकेट किया, उनको बढ़िया से हैंडल किया है, ताकि वहां पैनिक ना आए और वो जल्दबाजी करके एग्जिट ना करें। क्योंकि इसीलिए हम देख रहे हैं जो डेटा आ रहा है अभी, लगातार जो निवेश है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का निवेश है, वो बरकरार है, तो ये कोई भी बिल्कुल चिंता की बात नहीं, और ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है।
राइट। एंड सिद्धार्थ, बिफोर वी वाइंड अप आवर डिस्कशन ऑन द स्टॉक मार्केट्स एज सच, व्हाट वुड यू सी यू नो मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट यू नो 2 months से, what all would be the triggers for the market, the outcome of the US elections, and what about the geopolitical tensions which has been going on, especially the situation in West Asia, Will all these and the oil prices, although you know they have corrected a lot in recent times, we'll have a detailed discussion about oil as well. But will all these factors put together have some impact in the next, you know, 1.5-2 months to come?
No, as you rightly put, I think there are obviously what you said, US election is one of the things which everybody is looking at. And that is, keeping people on the edge. Plus, second is the China story. Obviously, we have seen FII shifting out. Plus, I think somehow they have also shifted out because they are getting at better valuations. They see the same stock in Indian market is at a higher level. So they are getting at cheaper levels. So they're probably also exiting because of that. Third, as you said, geopolitical is one of the biggest issues which is currently impacting the entire world. And there is complete uncertainty where it would lead to, when will it end? Because this has been going on for last 3-4 years. Yeah. Russia, Ukraine, or Israel.
Especially, you know, the Russian and Ukrainian conflict, when it began, many experts said that, you know, Ukraine will just not stand anywhere. And within a short span of 2 weeks or 10 days, yeah, it would be over. But that didn't happen.
That yeah, so that is on. Why it is also putting, it also raises questions on the commentary by the experts. Yes. So that is why I'm saying we are living in complete uncertain. Almost, if you look at the geopolitical conflict, the impact is almost on almost 40 countries are directly or indirectly involved, and that also is also impacting your crude oil prices. Plus, the world is also slowing down, and that impact is also shifting to India. So I think how Indian economy fares over next 2 quarters would also be very crucial for the Indian stock markets.
Yeah.
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के 5 प्रमुख शेयर बाजारों में से 4 में आज गिरावट का माहौल दिखाई दिया. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 1.5% से अधिक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.9% गिरा. गिरावट दर्ज करने वाले अन्य शेयर बाजारों में सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% से अधिक और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% से अधिक लुढ़का. इस बीच जापान में टोक्यो शेयर बाजार के निकेई में लगभग 1% की तेजी देखी गई. प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजारों में भी आज निराशा दिखाई दी. अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 1.4% से अधिक, जर्मनी के डेक्स में 0.9% से अधिक और लंदन के फुटजी में 0.4% की गिरावट चल रही थी. सिद्धार्थ, जैसा कि एशिया में और यूरोप में हमें ज़्यादातर गिरावट का माहौल ही दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है, जैसा आप अभी के बता रहे थे कि जो ये अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है, उसी का असर हमें अक्रॉस एशिया से लेके यूरोप तक दिखाई दे रहा है?
हाँ बिल्कुल अमरीश, और वो हमारी किसी डोमेस्टिक रीज़न की वजह से नहीं आ रहा, हमारे किसी अंदरूनी कारण, हम लोग भी उसके विक्टिम हैं बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली आउटसाइड. तो वही उसी तरह का जो चित्रण या जो दर्शा रही है एशियन मार्केट या यूरोपियन मार्केट्स में, वो अनसर्टिनिटी आपको दिख रही है या गिरावट दिख रही है. तो मुझे लगता है जब तक US इलेक्शंस का एक पिक्चर क्लियरली इमर्ज नहीं होती, और US इलेक्शंस के बाद भी जो प्रेसिडेंशियल नए प्रेसिडेंट होते हैं वो तकरीबन जनवरी में अज्यूम करते हैं ऑफिस, तो मुझे लगता है और फिर क्या होगा कि यूरोप और अमेरिका में इस समय लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, क्रिसमस की छुट्टी आ जाती है, तो मुझे लगता है जो माहौल है वो जनवरी के एंड के आसपास कुछ हमें डायरेक्शन दिखेगा.
या एंड यू स्पोक अबाउट US, लेट्स टेक अ लुक एट द US मार्केट्स एज वेल. US स्टॉक्स डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड यस्टरडे अमिड रिलीज ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट. The Nasdaq Composite Index scored a record closing high and ended the session with a gain of 0.78%, while the S&P 500 rose over 0.1%. However, the Dow Jones Industrial Average fell 0.36%.
और देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि की दर वार्षिक आधार पर इस वर्ष सितंबर में 2% दर्ज की गई. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर की छमाही में यह उत्पादन दर 4.2% थी. सीमेंट, रिफाइनरी उत्पादन, कोयला, उर्वरक, और स्टील में सितंबर 2024 में उत्पादन विकास दर सकारात्मक रही। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सीमेंट में उत्पादन 7.1%, रिफाइनरी में उत्पादन दर 5.8%, कोयला क्षेत्र में 2.6%, उर्वरक में 1.9% और स्टील में उत्पादन विकास दर 1.5% रही। इस बीच कच्चा तेल क्षेत्र में 3.9% की गिरावट दर्ज की गई, प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उत्पादन में 1.3% और बिजली में 0.5% की गिरावट दिखाई दी। सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे, एक अच्छी विकास दर है, हालांकि ये जो हमारे 8 प्रमुख क्षेत्र हैं, कोर सेक्टर्स हैं, सब में ये उसी तरह से नहीं रही, आप किस तरह से इसको विश्लेषित करेंगे?
नहीं अमरीश, देखिए जो कोर सेक्टर होता है वो तकरीबन आपका जो इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, उसका तकरीबन 40% इन कोर सेक्टर्स से आता है, जिसमें सीमेंट है, रिफाइनरी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, कोल, फर्टिलाइज़र। तो जो, और अगर आप इसको देखेंगे, ये जो 2% की ग्रोथ है सितंबर में, या इसको आप कह सकते हैं कि अगर सेम मंथ लास्ट ईयर देखेंगे तो ये 9% थी ये ग्रोथ, तो वहाँ से ये गिर के 2% हुई है। और बट कई बार क्या होता है कि किसी किसी महीने में साइक्लिकल होता है, लेकिन ये चूंकि सिर्फ इमीडिएट दिवाली के पहले का डेटा है तो थोड़ा सा चिंताजनक हो सकती है, लेकिन अगर ये सस्टेन करता है डेटा तो मतलब ये है, इसको इस पे जो है हमको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बट मुझे लगता है सिर्फ एक महीने का डेटा है, और हालांकि अगस्त में भी 4% के करीब था, तो गिरावट तो दिख रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन्वेंट्री बिल्डअप हो, तो इस वजह से भी, और जैसे हम देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स हैं जहां दिख भी रहा है, ऑटोमोबाइल है तो उसमें दिख रहा है कि इन्वेंट्री बिल्डअप है, कहीं स्लो डाउन है, मतलब स्लो डाउन का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो शायद वो भी एक कारण होगा जो ये हम इसमें जो गिरावट देख रहे हैं कोर सेक्टर।
इन सम मंथ्स मे बी यू नो देयर इज कम रीएडजस्टमेंट बीइंग डन एज फार एज
या ओनली इफ रंगबेशम ओनली इफ दिस डेटा सस्टेन्स लाइक नो ऑगस्ट इट
वाज अ क्लियर ट्रेंड
या सो अनटिल अनलेस वी गेट अ ट्रेंड एज आरबीआई गवर्नर ऑलवेज सेज ऑन इन्फ्लेशन वी विल ओनली कट इंटरेस्ट रेट्स व्हेन वी हैव अ क्लियर ट्रेंड दैट इट इज मॉडरेटिंग इट इज कमिंग डाउन टू आवर एक्सेप्टेबल levels of 4% or something, then only we, so same way I think in core sectors also this data, I think if we get a clear trend, if this happens for next 2-3 months also, we see a fall in the growth of core sector data, then only I think we should worry. Otherwise I don't see, because I see a pickup now because government is going to really go push capital expenditure in the remaining 2 quarters, so I think this should see a upside.
Yeah, Siddharth, as we all know that, you know, 40% of the weightage in the index of industrial production is from these core industries, 8 industries. What would you say, can we see a moderation of growth in IIP figures as well?
It should, obviously, because if 40% comprises of this, this should reflect in index of industrial production also. But I think given all that, the central bank governor is still confident that India will post a 7.2% growth for the current financial year. So I don't see this impacting or this sustaining for a long time. So yeah. I think some correction, some adjustment, as you said, do happen. And it is in such a large economy, these kind of adjustments are something which are acceptable, and they do happen. So I don't see that we should worry at this stage. Yes, but going forward, if the trend sustains, then only I think.
Yeah, but Siddharth, I want to highlight this particular aspect: electricity production going down by 0.5%, in the negative terrain, and also crude oil by almost 4% down. Don't you think this will have a impact, especially on the manufacturing sector, in the next 2-3 months when the data comes out?
No, that is why I said it would have been down, because if you are seeing a pile up in inventory in certain sectors, I gave an example of automobiles. So that has a straight correlation. Why would you produce something, or why would you, if there is no demand, if there is a sluggish demand or a fall in demand, so obviously this would reflect in this data.
Right.
As this is, these are the 8 essential components which make up 40% of our index of industrial production.
Right.
So I think that is basically the reason, because of some inventory buildup, certain sectors slowing down. So that would be getting reflected here.
Right. Let's move on now. Commerce Minister Piyush Goyal embarked on a comprehensive diplomatic mission in Riyadh today, marking significant strides in Indo-Saudi relations through a series of high-level meetings and cultural exchanges. We have more details from our Dubai correspondent.
India's Commerce Minister Piyush Goyal is on a high-profile diplomatic and business engagement tour. The minister began the day with a panel discussion at the prestigious Future Investment Initiative Summit in Riyadh. He then went on to inaugurate the Luluwali Diwali celebration at the Lulu hypermarket, showcasing the growing cultural ties between India and Saudi Arabia. In a series of crucial business meetings, the minister engaged with global industry leaders. He met with William E. Ford, CEO of General Atlantic, to discuss potential collaborations in India's healthcare sector, particularly in consumer-focused health enterprises. Additionally, they explored opportunities for expansion of General Atlantic's investments in India's global capability centers and other sectors. This was followed by talks with Peter Herwick, the CEO of Schneider Electric, a global company specializing in energy management and digital automation. The discussion centered on Schneider Electric's investment plans for India and how the company can leverage the nation's talent pool and government support to provide high-tech, sustainable and energy-efficient solutions to the world. This is Vinod Kumar from Dubai.
Aur chalte hain agli khabar ki aur. Tel vipanan companies OMC ने पेट्रोल पंप डीलरों को दे डीलर कमीशन में वृद्धि की घोषणा की है. साथ ही पेट्रोल और डीजल डिपो से दूर दराज के स्थानों पर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर राज्य माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने के निर्णय की भी घोषणा की गई है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओएमसी के इस निर्णय का स्वागत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे. सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे, एक अच्छी खबर सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आती है तो?
नहीं, दोनों बात जो आपने बात कही अमरीश, जो स्टोरी में आपने बोला भी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो कमीशन है, जो पेट्रोल पंप जो विक्रेता है उनको जो मिलता है कमीशन, उसमें वृद्धि की है, तो वो एक तो उनके लिए अच्छा है
जी.
दूसरा, जो रैशनलाइजेशन किया गया है, जो इंट्रा स्टेट फ्रेट जो होता है, जो लगता है उस पर जो रैशनलाइजेशन, उसकी वजह से कुछ जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें भी जो है उससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट होगी. और जहां तक आम उपभोक्ता की बात आप कह रहे हैं, चूंकि कच्चे तेल के दाम अभी नीचे आए हैं, तो हम आशा करते हैं अगर ये सस्टेन करें तो हम सबके लिए भी अच्छी खबर आएगी.
In related news, crude oil prices gained more than 2% today. Brent crude was trading 2.14% up at $72.64 per barrel, while the West Texas Intermediate crude gained 2.11% to trade at $68.63 per barrel when reports last came in. Something which you just mentioned, Siddharth, do you think the government would be keen to pass on the lower crude prices to the consumers?
See, Rangabesham, about a month back, the crude oil prices had come to a level where there was already a thinking within the government to, you know, pass on this benefit. But what happened, the Iran and the Israel conflict kind of precipitated and again pushed up the crude oil prices. There was a
and the
spurt.
Uncertainty, yes.
Yeah, so that uncertainty, and that's why I said also earlier also that if they sustain for some time,
yeah.
So, and plus I think oil marketing companies have been also posting some losses in terms of the sales that they are doing on LPG. So yeah. I think we'll have to wait and watch for some time.
और भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अप्रैल से सितंबर 2024 तक की त्रैमासिक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की. रिपोर्ट के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688.27 अरब अमरीकी डॉलर था और सराफा बाजार में आज सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.42% बढ़कर 79,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.59% गिरकर 98,460 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
आप दोनों को भी धन्यवाद.
And before we close, a quick look at the top stories. Domestic benchmark indices log losses. Sensex falls over 420 points. Nifty settles below 24,350. India's core sectors grow by 2% in September this year. and Union Minister for Commerce Piyush Goyal participates in panel discussion at the Future Investment Summit in Riyadh. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.